نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير Don't be sad day number 15 غم نہ کرو day number 15 آج ہمارے سامنے قرآن پاک کی وہ آیت جس میں غم سے متعلق بات ہے وہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے اور یہ وہی آیت ہے کہ جس نے ماشاءاللہ اس کورس کو ایک خوبصورت رنگ دیا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فانزل اللہ سکینتہ علیہ ویدہ بجنود لم تروہا وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیا واللہ عزیز حکیم تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اس کو نکال دیا تھا جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور کافروں کا بول نیچا کر دیا اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے اللہ تعالیٰ زبردست اور دانا بینا ہے سبھی کو پتا ہے کہ یہ کن دو خوش نصیب ہستیوں کے بارے میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی کا مقصد ہی دین کی سرفرازی تھا اللہ کے رسول اور پیغمبر تو بھیجے ہی اسی مقصد کے ساتھ جاتے ہیں کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ کہ غلبہ دین ہو لیکن جب انسان اخلاص کے ساتھ اس راستے میں نکلتا ہے تو اس کو اچھے ساتھی ملتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اندر اخلاص بھی ہے اور طریقہ سنت کے مطابق ہے اللہ کسی کو بھی دین کے لیے صدیق اکبر جیسے ساتھی دے دے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ بھی ہے کہ یہ دین غالب ہوگا اور یہ کام جس کے لیے کوئی اٹھا ہے وہ ضرور تکمیل تک پہنچے گا اور جب اس راستے میں کوششوں کا رخ دن رات کے فرق کے باوجود اور اسی طرح کے حالات سے اوپر اٹھنے کے باوجود کوئی وہ خیر خواہ نتائج دیتا ہوا نہ دکھے کہ جس کے بعد کوئی یہ کہے کہ ان لوگوں پہ مزید وقت لگایا جائے تو اللہ کی سنت وہ جگہ چھوڑ دینے کا حکم دیتے ہیں آج صبح آیت بایت کلاس میں بھی ہم نے کچھ اسی قسم کی بات کی تھی کہ اللہ انبیاء کرام کو عموماً اس وقت جب دلوں میں تیل نہیں رہتا تو ایک بد دعا کرنے کا حق دیتے ہیں اور اس بد دعا یا دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نبی اور ان کے ساتھیوں کو ہجرت کا حکم دے دیتا ہے اور جو باقی لوگ رہ جاتے ہیں ان پہ اللہ کی کوئی نہ کوئی آفت ٹوٹتی ہے پچھلے انبیاء کرام کے ساتھ یہی ہوا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہ وقت آیا تھا کہ جب قوم نے جہاد کا انکار کر دیا اور کہا کہ نکل جاؤ بس یعنی اب اس پہ چلی جاؤں گی تو بات لمبی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا تو آپ نے یہ نہیں مانا آپ نے یہ حق چھوڑ دیا خود تو ہجرت کے لیے نکل گئے لیکن پیچھے والی قوم پہ اس طرح کا عذاب نہیں آیا جو پچھلی قوموں پہ آتا ہے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہتے تھے وہ سفر ہجرت میں بھی آپ کے ساتھ ہی تھے ہم نے اسی کورس کے آغاز میں جب یہ آیت پڑھی تھی تو وہاں تھوڑا سا تذکرہ ہوا تھا اسی کو سن لیجئے لیکن یہاں آج میرے آپ کے لیے غموں کی دوا یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کے غموں سے اوپر اٹھیے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کا غم لگا لیجئے اور جب یہ غم لگ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لا تحزن اس کا مطلب کیا ہے پھر ذاتی غم منانا یا ذاتی خوشی میں رہنا تو شرمندگی لگتی ہے انسان اپنے ہاتھوں ہی خود کو برا سے بلا کہہ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا تمہیں ایک خاص حد تک ہر چیز درست ہوتی ہے اللہ نے ہماری ساری زندگی کی ضروریات ساتھ ہی لگائی ہیں کوئی منع نہیں بلکہ اس میں بھی اجر اور ثواب ہے لیکن جب تقابل میں بات آتی ہے تو پلڑا کس کی طرف پڑتا ہے آپ اور میں اب بس اتنی سی بات اس کی سمجھ کر آگے چلے جائیں اور وہ کیا ہے کہ دین کے راستے کی مشکلات اللہ کی مدد کو لانے کا ذریعہ بنتی ہیں ان کو اپنی زندگی میں جگہ دیجئے ہماری ہر وہ بہن ہمارے ہر وہ ساتھی ہر وہ شخص امت مسلمہ کا ہو یا کسی بھی بات کا، اگر آپ کسی بھی دکھ میں ہیں، کوئی چلا گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی رشتہ ٹوٹ گیا، بچوں کے رشتے نہیں ہوتے، پورے شعور اور دل کے ساتھ اللہ کے دین کی مدد میں لگ جائیے، انصار اللہ بن جائیے. اور یہ اگلا درجہ ہوتا ہے دین کا، جہاں آپ خود کو تو اللہ کی مرضی کا بنا ہی رہے ہوتے ہیں، بنا بھی لیتے ہیں، لیکن پھر ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ کرنا بھی ہے. کیونکہ جب نماز، روزہ، حج ہم کرتے ہیں، وہ تو اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں نا، وہ تو ہمارے لیے لازم ہے، وہ تو ایک قسم کا فیول ہوتا ہے جو ہمیں تیار کرتا ہے کہ ہم دین کے رستے میں بھاگیں. مثلا ایک گاڑی ہے، آپ اس میں پیٹرول ڈالتے ہیں، اس کی ٹنکی بھر دیتے ہیں، آپ اس کا انجن آئل چیک کرتے ہیں، آپ اس کی بیٹری کو پورا فلی چارج رکھتے ہیں، یہ مقصد تو نہیں ہے نا. یہ ساری تیاریاں کر کے آپ مطمئن ہو کے سو تو نہیں جاتے کہ بھائی گاڑی میں سب کچھ ہے، الحمدللہ بہت اچھا ہے، بھائی گاڑی کو نکالیے، چلائیے، یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ آپ اس کو چلائیں، پیٹرول بھی ہے، سب کچھ ہے. تو بالکل اسی طرح جب گاڑی ریڈی ہو چکی ہو تو اس کو چلائیں، تو وہ پھر پیٹرول اور باقی مینٹیننس کا حق ادا ہوتا ہے. اسی طرح ہم دن میں 5 بار نمازیں ادا کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور بھی اللہ نے ہمارے اوپر جو لائبلٹیز رکھی ہیں وہ، بلکہ اپنی خوشی سے والنٹیئرلی بھی کچھ کرتے ہیں. لیکن ان سب کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے کے ساتھی بن جاؤ، انصار اللہ بن جاؤ. ابو بکر صدیق کو یہ بات اتنی خوبصورتی سے سمجھ آ چکی تھی کہ پھر انہوں نے اس رستے میں، غار میں، اپنے پاؤں کے انگوٹھے میں سانپ کا ڈسا جانا یہ بھی مسئلہ نہیں سمجھا، اور ہل نہیں رہے کہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھل جائے. ہے کسی کے اندر اس درجے کی صدیقیت تو یقین کیجئے درجہ بڑا ہے. اللہ تو نقطہ نواز ہے، وہ تو میرا رب ہے، وہ تو آپ کا رب ہے، وہ تو شاکرن علیمہ بھی ہے، وہ کیسے آپ کو تنہا چھوڑے. تو اگر اس رستے میں ایک آنسو بھی گرا، ایک پسینے کا قطرہ بھی بہا، ایک دوا گلے میں اچھو بھی لگ گیا، بیٹھنے سے کمر دکھنے بھی لگ گئی، سارے گھر والے کسی ذاتی خوشی یا کسی ایسے معاملے میں ہیں کہ جو ان کے لیے ضروری ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میرے لیے اس وقت دین کا تقاضا، تو پھر آپ دیکھیں گے ایسے بندے کو بے غم کرنا اور بے خوف کرنا یہ اللہ کا کام ہے. اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنے راستے کے راہی بنا دے کہ ہم کہہ سکیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. پھر آگے دیکھتے ہیں کہ پچھلے سبق میں ہم نے کیا ٹاپکس کور کیے. جو خوشگوار زندگی چاہے وہ یہ 10 کام کرے، اور میری خواہش ہے کہ ان 10 کاموں کو الگ سے پیش کر دیا جائے. لوگ بہت ساری باتیں یاد نہ بھی رکھے، ایک ایک کر کے اس چیز پہ آتے جائیں گے، خیر بڑھتی جائے گی. اسی طرح ہمارے واقعے کو قبول کر لیں تو حزن نہ ہوگا، یعنی ایکسیپٹ اٹ. جو ہوا، ایک ٹانگ رہی نہ رہی، 10 انگلیوں میں سے ایک رہی نہ رہی، 20 میں سے بھی ایک نہ رہی، کوئی بات نہیں. پھر اسی طرح اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے، جس چیز کے لیے آپ غمگین ہیں افسردہ نہ ہو، یہ بد نصیبی کا راستہ ہے. اور اسی طرح سردگی خودکشی کا دروازہ ہے، استغفار سے بند تالے کھل جاتے ہیں، لوگ آپ کے لیے خطرہ مول نہیں لیں گے. مال کے خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کیجئے، غیر اللہ سے تعلق نہ رکھیں، اور شرح صدر کے اسباب کیا ہیں. آج ہم شروع کریں گے، آزادی کا مزہ لطیف ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ آزادی کی کیا دولت ہے کہ جو غموں سے بے نیاز کر دے. شیخ راشد اپنی کتاب المسار میں کہتے ہیں، جس آدمی کے پاس 560 روٹیاں، زیتون کا گھڑا اور 1600 کھجوریں ہوں، اسے کوئی غلام نہیں بنا سکتا. اب بعد میں جوڑ توڑ کر کے دیکھیے گا یہ سب کچھ کس پہ آتا ہے. سلف میں ایک نے کہا، جو پانی اور سوکھی روٹی پر اکتفا کر لے وہ اللہ کے علاوہ کسی کا غلام نہیں ہو سکتا. اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جسے جتایا جائے. ایک شاعر کے قول کا مفہوم، میں نے اپنے حرص و اس کی پیروی کی جس نے مجھے غلام بنا دیا. یعنی جب تک دل میں لالچ ہی رہا، میں غلام رہا چیزوں کا. اگر میں نے قناعت سے کام لیا ہوتا تو میں آج آزاد ہوتا. جو لوگ مال جمع کر کے یا منصب اور نوکری کے ذریعے خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ تو در حقیقت گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ انہیں صرف رنج و تفکرات کی شکل میں ملے گا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں، آیت 94، تم ہمارے پاس تنہا تنہا آتے ہو، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا तुम्हें जो कुछ हमने दिया इसे पीठ पीछे छोड़ आए हो। फुरादा, अकेले अकेले चलोगे तो क्या होगा? तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखरत बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। तो क्या पता चला कि ये दुनिया के मजे लेने की गुलामी में जब हम पड़ते हैं तो मजा कोई नहीं आता। हम इन्हीं चीजों के गुलाम बन के अपनी जिंदगियां तक लगा देते हैं, लेकिन पूरी खुशी फिर नहीं मिलती। सैर पे जाइए, थकन के मारे वापस आएंगे। खूब अच्छा खाने गए, 2-4 हजार रुपए लगा कर एक एक बंदे को खिलाया पिलाया, लेकिन आप देखिए कि कोई पेट में दर्द और कोई बोझलपन का शिकार वहां से आएगा। इतने कपड़े बन के अब समझ भी ना आए कि क्या पहनूं तो क्या छोड़ूं। उस वक्त भी कोई वो खुशी नहीं होगी जो मॉडल के चेहरे पे थी। वो तो खुश थी कि मेरा चेहरा देखकर कितने जोड़े बिक जाएंगे। जिनको मिल जाते हैं ना, वो फिर भी नहीं खुश होते। आजमा के देख लीजिएगा। तो क्या पता चला, वो बंदा आजाद है जिसकी ख्वाहिशें छोटी हैं। किसी का बड़ा प्यारा जुमला लगा के जो चीज महंगी होती है मैं उसको सस्ता कर लेता हूँ। अब ये कैसे होता है भाई, कोई रेप्लिका आ जाता है ये वो? नहीं, कहा मैं उसको लेना छोड़ देता हूँ, रखो अपने पास, मैं नहीं लेता। बात तो बहुत अच्छी है, इसलिए कि जब आपको अल्लाह कोई नेमत बगैर स्ट्रगल के बगैर जगलिंग के दे दे, बिस्मिल्ला। वरना याद रखिए, दुनिया का माल जितना ज्यादा होता है उतना कम होता है। ये आप असूल लिख लीजिए, बाद में इस पे गौर कीजिएगा। आपका दिल गवाही देगा कि ये बात कितनी सच्ची है, क्योंकि अल्लाह की इस किताब में हर बात लिखी हुई है। हम छोटी छोटी चीजें लेने के लिए पैसे देते हैं ना, चलिए ये भी काफी था। अगर सिर्फ पैसों से ही बात होती तो ठीक था। हम इसके साथ अपनी सेहत, अपना वक्त, अपनी परेशानियां, सब कुछ देके बैठे होते हैं और नई परेशानियां मोल लेकर आते हैं। तो जिंदगी में आजाद रहिए। एक हमारी सिस्टर हैं तो वो सुनाती हैं कि गांव में एक बाबा जी थे, तो बड़े ही गरीब थे और हुक्का लेके इधर बैठे तो इधर से खा लिया, उधर बैठे तो उधर खा लिया। खैर, हमें उनके हुक्के से क्या लेना, हम तो अपने अमल के लिए सुनने लगे हैं। तो कहने लगे कि एक दिन रेडियो पे खबर आई कि बस्ती में सैलाब आने लगा और इतने घंटे में पूरी बस्ती पानी में डूबने वाली है, जो हाथ आता उसको लेके निकल जाए। बाबा जी बैठे हुक्का ही पी रहे, लोगों में भगदड़ मच गई, ये तो वो तो वो तो ये। आखिर कोई पास से गुजरा, का बाबा बाबा आपको नहीं पता, जल्दी करो, ये सामान जमा करो। मुराद ये था कि आराम से बैठे हो। तो बाबा जी खड़े हुए, कपड़े झाड़े, अपना हुक्का पकड़ा और कहने लगे, गरीबी ने आज ही तो मजा दिया, चलो किधर जाना है, मेरे पास है ही कुछ नहीं जो मैं लेने जाऊंगा। तो ये आजादी है, ऐसी आजादी एक नेमत है, इसका मजा लतीफ है। इंसानों की गुलामी से आजादी इख्तियार कीजिए, दुनिया की बेकार की मशक्कत से आजाद हो जाइए, अल्लाह की गुलामी में आ जाइए, ये एक नेमत है। जैसे कि मेरे असलाफ में से किसी ने कहा, जो रूखी सूखी रोटी पर इक्तफा करे वो किसी का गुलाम नहीं हो सकता। याद रखिये, हम अपनी आजादी कौमी सतह पे लेकर इनफरादी सतह पे बेचते ही तब है जब हमें उसके बदले में कुछ भारी कीमत चाहते हैं। और एक के बन जाइए, या कनाबुदु व या कनस्तन, जो ये जुमला बोल देता है ना वो असल में आजाद है। वो कहते हैं ना कि हुर्रियत में ही असल में लज्जत है, और अल्लाह ताला ने ये बात सच फरमाई। आला सूरत 16:17 आयत है, बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, बल्कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत कहीं बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। तो आज से इस दुनिया की चीजों को कह, मैं तुम्हें इस्तेमाल तो करूंगी, मैं तुम्हें जाया भी नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मरूंगी नहीं, तुम्हारे गम में नहीं जीऊंगी। हाय बटन नहीं सही लगे, हाय दर्जी ने लेस गलत लगा दी। औरतों का तो कितना खून सूख जाता है कभी कभी, जब उनके मनपसंद कपड़े ठीक सिलते ही नहीं। अच्छा भाई नहीं सिले, तंग सी दिए ये किसी और के थे, खुले सी दिए तो खुले पहन लूंगी। ऐसी तबीयत लाइए, इंशाल्लाह खैर होगी और इफाका भी होगा इंशाल्लाह ताला। हमारे तो गम ये, हाय रंग छूट गया, हाय कपड़ा धोए खराब हो गया, हाय स्टेन पड़ गया, और किसी का तो घर भी टूट गया था जब दुल्हन की सास ने उसके मुंह में केक डालना चाहा, मोहब्बत में सब मेहमानों के सामने शादी हॉल में, और वो केक थोड़ा सा दुल्हन के कपड़ों पे गिर गया। गुस्से में अपनी नई नवेली सास पे कुछ ऐसे जुमले बोले कि उसी के नए नवेले शौहर ने माइक पे आके उसको तलाक दे दी। ये बेसब्रियां, ये गुलामियां हैं, और उस बच्ची का कसूर भी कोई नहीं जिस बेचारी ने कुछ 7-8 महीने लगा कर जोड़ा ऑर्डर करके बनवाया होगा और फिर पता नहीं उस पर क्या कुछ लगवा के उसको अपने माप का करवाया होगा, तो उसके तो ख्वाबों का महल चिकना चूर हो गया सास के एक लाड में एक प्यार में। ये गुलामी है, ये दोबारा नहीं पहनना, ये गुलामी है, इतना महंगा और बाजू भी नहीं, ये गुलामी है। आज एक एक ब्राइडल ड्रेस तो देखिए, हैरतनाक हद तक कीमतें बढ़ चुकी, ये गुलामी है। इस नफ्स के बुत को 5-6 फुट जिसके अंदर गंदगी, जिसके अंदर स्मेल, जो एक दिन सुबह उठ के ब्रश ना करे तो बोला ना जाए, को पास ना बैठे, अपनी गंदगी इंसान दिन में 1-2 बार जरूर साफ करता है, वो इंसान 3-4-5 हजार पाउंड का एक जोड़ा अपने लिए बनाए। मैं कभी ना ये लफ्ज बोलती अगर मैंने अपनी आंखों से ये टैक्स लगे हुए ना देखे होते कुछ चीजों पे। अल्लाह ताला हमें इन गुलामियों से निकाले और अपना गुलाम बना दे। आगे देखिए, सुफियान सौरी ने मट्टी का तकिया बनाया। हज करने गए मुजदलिफा में उन्होंने मट्टी के एक ढेर का तकिया बना लिया। लोगों ने इनसे कहा, ऐसी जगह में आप और मट्टी का तकिया, जबकि आप दुनिया के सबसे बड़े मुहद्दिस हैं। फरमाया, ये तकिया खलीफा अबू जाफर अल मंसूर के तकिए से बेहतर है। फिर एक शेर है, खुदा करे वो हाथ जो तुझे जलील करने के लिए उठे तुम तक पहुंचने से पहले ही तलवार से काट डाले जाए। कह दो हमें वो पहुंचेगा, इल्ला मा कतबल्लाहु लना, जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया। तो क्या पता चला कि इस मट्टी के वजूद ने जब मट्टी में ही जाना है तो दुनिया में तकिया भी मट्टी का बन जाए तो क्या क्या पता चलता है। सुफियान सौरी की सादगी, इतना बड़ा इमाम, आज तो हम के हैं जमीन पे मट्टी का तकिया, हम इतने मशहूर, हमें इतने जानते हैं। लेकिन ये लोग देखिए कि बादशाहों की वो चीजें जिसके बाद अपनी मर्जियां छोड़नी पड़े उनको ठुकरा देते थे, आजजी और सादगी इख्तियार करते थे। तो बस यही सीखा आपने, मैंने इस चीज के ऊपर रहना है। फिर इसके बाद देखिएगा, फाह बाजों की तरफ कान ना धरें। झूठे वादे, फजूल किस्म के गलत अंदाजे, मुराद असेसमेंट, जस्ट लोगों के बारे में असेस ही करते रहना कि ये ऐसा तो वो ऐसा, जिनसे अक्सर लोग खौफ खाते हैं सिर्फ औहाम होते हैं। यानी जितने भी हमें अक्सर ख्याल आते हैं ना, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, वो हमारे वहम होते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, अश्शैतान यईदुकुमुल फक्र, शैतान तुमको मुख्ताजगी से डराता है और बुरे कामों का हुक्म देता है। अल्लाह ताला तुमसे मगफरत और फजल का वादा करता है, अल्लाह ताला वसअत वाला और अलीम है। कुलक, बेख्वाबी और अलसर, ये सब कनूतियत, मायूसी, नाकामियों, नामुरादी के नतायज हैं। यानी हर वक्त तबीयत बोझल रहना, रातों को नींद ना आए, मायूसी है, डिप्रेशन है, आप बिल्कुल ऐसे बैठे हुए जैसे आप मट्टी का एक तोदा। तो ये सब चीजें मान लीजिए कि आपके पास अल्लाह की तरफ से एक सजा है या फिर अल्लाह दर्जों की बुलंदी चाहता है आपकी। शायर कहते हैं, हमें सजा ना दो, हमें तो ऐसा कुलक लाहक है जो रात भर सोने नहीं देता। मुराद है कि तुम्हारी सजा की जरूरत नहीं, हमने खुद को खुद ही सजाएं दी हुई हैं जाग जाग कर। तो फिर आपके मेरे लिए इसमें क्या अमल है, गौर कीजिए। इधर उधर की बातों की तरफ कान न रखिए। बहुत सारे लोग हर वक्त उसने कहा, इसने कहा, क्या कहा, कब कहा, कैसे कहा, इसके ऊपर है। करें क्या, अफवाहों से बचिए। अफवाह क्या है, झूठे बातें और खबरें, फजूल किस्म के गलत तखमीने और कयासात। एक सवाल लिखिए कि क्या फर्क पड़ता है, यानी अफवाहों पर कान धरने से क्या नताइज निकलते हैं, मतलब मेरा क्या बिगड़ेगा, मेरा क्या नुकसान होगा। तो पहली बात है कुलक। कुलक कहते हैं दिल के अंदर एक बोझ होना, ऐसी खामखा की एक गिल्ट लिख लीजिए, चलिए गिल्ट बेहतर है। बेख्वाबी, रेस्टलेसनेस, कनूतियत और मायूसी, आप बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं। और फिर नाकामी और नामुरादी, तीन चीजों पे कान रखिए। खाम खा हर चीज को अपने बारे में क्यों लेते हैं। देखिए जो अफवाहें होती है ना, उसमें अक्सर लोग टहलते रहते हैं, मेरे बारे में कहोगा, मुझे सुना दिया, ये मेरे खिलाफ कोई साजिश है, ये है वो है। तो अपने आप को इससे निकालिए। नेक्स्ट टिप देखिएगा, सबो शितम, मुराद गाली गलोच। कोई भी अगर आपको बुरा भला कहता है, गाली दे या कुछ और करे, तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा। अमेरिकन सदर इब्राहिम लिंकन कहा करता था, सबो शितम से भरे जो खतूत मुझे भेजे जाते हैं, मैं इनका लिफाफा खोल कर नहीं देखता ना पढ़ता हूँ। इनका जवाब तो क्या दूंगा, वजह यह है कि कौम के लिए जो कुछ मैं कर रहा हूँ इससे इतनी फुर्सत नहीं कि इन चीजों में पढ़ूं। कितनी बड़ी बात है। और इसकी बात पढ़ के मैंने दोबारा नाम चेक किया कि ये अमेरिकन सदर की बात है। बहुत सारे लोग यही रोते हैं, लोग मुझे बुरा कहते हैं, मेरे बारे में ये कहा, नेगेटिव फीडबैक दिया और फिर सफाइयां पेश करेंगे, अल्लाह की कसम मैं नहीं ऐसी, मुझे रॉन्ग नहीं सोचो, मिसअंडरस्टूड ना करो, दिस 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 दिस। याद रखिएगा, मसरूफ लोगों के पास ना तारीफी जुमले पढ़ने का वक्त होता है और ना तनकीदी। अल्लाह ताला हमें दूसरों की बातों से बेनियाज कर दे। आप इनसे एराज कीजिए और बेहतर दरगुजर से काम कीजिए, सफखन जमीला का लफ्ज है इसमें, इनसे दरगुजर कीजिए और इन्हें दूर से सलाम कहें, एहसान फरमाते हैं, मैं परवाह नहीं करता कि गम के मारे कोई सांड चलाया या पीठ पीछे किसी बुरे ने मेरी बुराई की। करते हो तो कर लो, है ना एक रब देखने वाला मेरी इन चीजों पे नजर रखता है। मतलब यह है कि गंदे और अजील और हकीरों की गाली, लोगों की इज्जत पर हर्फ लाने वालों की बातें कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किसी मुसलमान को इन्हें अहमियत नहीं देनी चाहिए, किसी बहादुर को इनकी बुनियाद पर कोई इकदाम नहीं करना चाहिए। दूसरी जंगे अजीम में अमेरिकन अमीर अल बहर एक शानदार और मशहूर आदमी था, लेकिन इसके मातहत इसे नापसंद करते और गालियां देते थे। एक दिन बोला कि इस तनकीद से मेरा क्या बिगड़ेगा, अब मैं बड़ा हो गया हूं, उम्र खासी हो गई, मैं जानता हूं कि बातों से बुलंदी नहीं रहती, ना वो मजबूत दीवार को उड़ा सकती हैं। जी नोट कर लें इस जुमले को। हम हर वक्त आप कहते हैं मेरा तो मोरल डाउन हो जाता है, मैं तो इतने शौक और जौक से काम करने निकली थी, फिर इतनी तनकीद हुई मैं चुप होके बैठ गई, मैंने तो राय दी थी मीटिंग में लेकिन फिर किसी ने मेरी बात गलत समझी, अब मैं नहीं बोला करूंगी। बेनियाज हो जाइए, एक जुमला लिख लें। सेंसिटिव लोग अल्लाह के रस्ते के काम नहीं कर सकते, बड़ी जल्दी उनका नफ्स बीच में अड़े आता है, उनको किसी की कोई बात चुभती है, किसी की बुरी लगती है और वो चुपके से चाहे बता के कर बैठे या बताए बगैर ही बैठ जाए, ज्यादा दूर वही जाएगा जो मट्टी में मट्टी मिलकर अपनी इसलाह की खातिर आगे से आगे जाता ही जाएगा। शायर कहता है, ये शायर मुझसे क्या चाहते हैं जबकि मैं 40 की हद भी पार कर चुका। यानी 40 साल के बाद बंदे को किसी की बातों का असर नहीं होना चाहिए। हजरत ईसा अलैहि सलाम के बारे में मनकूल है कि फरमाया, दुश्मनों से प्यार करो, मतलब ये कि दुश्मनों को बुरे तौर पर माफ कर दो ताकि तुम्हें शिकावत, जज्बे इंतकाम और हसद से निजात मिले, ये आजार जिंदगी के दुश्मन है। बहुत ही प्यारा जुमला है। और 40s के बाद तो हमारी दुश्मनी और जरा पक्की होती है, बचपन और जवानी में लोग फॉरगिव फॉरगेट रहते हैं, इट्स ओके ओके डोंट वरी, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। यंगस्टर भी अक्सर ये कहते, इट्स ओके डोंट वरी, ठीक है कुछ नहीं होता, जाने दीजिए, ऐसा है वैसा है, लेकिन सारी जंगें लड़ाइयाँ इख्तलाफी बातें होती हमारी 40s 50s के इन बिटवीन है। तो माफ कीजिए, आप ही यहाँ बैठ के कहिए, मैं अब दुनिया से जाने वाली हूँ, अब क्या दुश्मनियां पालू, 40 से पहले क्या चले, मेरा कैरियर है, स्टेटस है, ये है, मुझे फायदा लेना है, अब तो ठंडे होके बैठ जाए। और लोगों से दरगुजर करने वाले मुहसिन है जिन्हें अल्लाह महबूब रखता है, जाओ तुम सब आजाद हो, आज तुम्हारे ऊपर कोई मलामत नहीं, जो गुजरा इसे अल्लाह माफ करे। जी ये किसने कहा था कि जाओ तुम सब आजाद हो? और यूसुफ अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, ला तसरीबा, आप भी यहां बैठकर कहिए मुझे तो अल्लाह की महबूब बनना है, तो फिर मुझे किसी से कोई बात नहीं है। तो जरा सा दोहराइए क्या सीखा, लोगों की गालम गलोच बुरी बातें आपका नुकसान नहीं करेंगी, किसी को बुरा भला कहना, तनकीद करना, ऐब जोई करना, ये सब सबो शुतम कहलाता है। और ये आयत सूरह ज़ारियात 54 थी कि आरिदन हम, इनसे राज कीजिए, और सूरह हिजर 85 थी के दरगुजर कीजिए, कैसा अच्छा दरगुजर करना। और ये जो इब्राहिम लिंकन का कॉल हमने भी पढ़ा, ये कामयाब लोगों के तौर तरीके होते हैं, चाहे वो मुस्लिम हों कि गैर मुस्लिम। दुनिया में भी जो लोग बहुत काम करते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा गौर व फिक्र नहीं करते, उनको खुद भी पता होता है हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या ठीक कर रहे हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा इससे, सबर शतम से आपका नुकसान हो ही नहीं सकता। हदीस ले लीजिए, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला से है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हें ताज्जुब नहीं होता कि अल्लाह ताला मुझसे कुरैश की गालियों और लानत और मलामत को किस तरह दूर करता है? मुझे वो मुजम्मम कहकर बुरा कहते, इस पर लानत करते हैं, हालांकि मैं तो मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सही बुखारी की रिवायत 3533 है। तो फिर ज्यादा कॉन्शियस ना हो, फिर करें क्या? अगली टिप लीजिए, कायनात की किताबे जिमाल पढ़िए। जी, इतना प्यारा तरीका है ये गमों को भुलाने का। छोटे से बच्चे को भी आप खुली जगह पर ले जाए ना, तो वो एकदम इधर उधर देखने लग जाता है। अल्लाह तआला की मखलूकात में जमाल का मुतालिया और कायनात में गौर करके लुत्फ उठाने से भी शरह सदर की दौलत मिलती है। ये किताब खुली है, खरीदनी भी नहीं पड़ती, लाइब्रेरी में भी नहीं जाना पड़ता, बुक स्टोर में भी नहीं जाना पड़ता। अल्लाह तआला अपनी मखलूक के बारे में कहता है, पानी के जरिए हमने दिलकश बागात उगाए, ये अल्लाह की मखलूक है, मुझे दिखाओ कि इसके अलावा दूसरों ने क्या पैदा किया है। कहो देखो क्या है आसमानों और जमीन में। आगे हम कायनात के बारे में बस तफसीलात बताएंगे जो अल्लाह ताला की हिकमत और अजमत की दलील होंगी। वो जात है जिसने हर चीज को खल्क किया फिर रास्ता बताया। और बकौल शायर, फिजा की किताब पढ़ो, इसमें तुम्हें वो सूरतें मिलेंगी जो किसी किताब में नहीं पढ़ी। ताबनाक सूरज, चमकदार सितारे, नहरें, तालाब, टीले, दरख्त, फल, रोशनी, हवा, पानी, हर चीज का मुतालिया करो, बोल उठोगे फतबारकल्लाहु अहसनुल हालिकीन। बस अल्लाह बाबरकत हर सबसे बेहतर तख्लीक करने वाला। हर चीज में इसकी निशानियां हैं जो ये बताती हैं कि अल्लाह वाहिद है। ईलिया अबू माजी कहता है, ऐ शिकायत करने वाले, तुझे कोई बीमारी तो है नहीं? तुम बीमार रहोगे तो सुबह में काम पर कैसे निकलोगे? तुम गुलाब का कांटा देखकर शिकायत करते हो, तुम्हें ये नजर नहीं आता कि शबनम ने इसे ताज पहना दिया है। जो साहबे जमाल ना हो, इसे कायनात में जमाल कैसे नजर आए? कभी आपने भी ताज पहना हुआ देखा है कांटे के ऊपर? क्या खूबसूरत पिक्चर्स होती हैं अक्सर, कांटों के ऊपर पानी के कतरे ऐसे चमक चमक के ताज की तरह दिखते हैं। तो क्या पता चला, ऑब्जर्व द नेचर। बाग में जाइए, खुली जगह में देखिए, क्या कुछ नहीं दिखता। और लोग आज कमरों में ही रह गए ना, घुटन का शिकार, छोटे कमरे, और वो भी अगर एयर कंडीशन है तो बाहर की हवा तो लगनी दूर की बात ही, खिड़कियों पे दबीज पर्दे हैं। तो अपनी जिंदगी को जरा सा ओपन कीजिए, अल्लाह ताला की खूबसूरत कायनात पे गौर व फिक्र कीजिए। फायदा क्या होगा, 5 फायदे नोट कर ले। मुतासिर कुन होगी, आप इम्प्रेस होंगे अल्लाह ताला से। सबक आमोज होगी, कैसे, जब आप एक एक चीज पे गौर करके उससे सबक लेते जाएंगे। कायनात एक खामोश उस्ताद है। वीकेंड सेशंस में हमने 3 ऐसे ही उस्ताद देखे थे, एक आध वीक पीछे भी जाकर देखे। तो इसी तरह इंशराह सदर होगा, सीना खुलेगा। कभी भी कोई चीज डिसाइड करनी हो ना, ओपन एयर में चले जाएं। एक तो ऊपर से आसमान दिखता है, अल्लाह से कुर्बत का एहसास होता है, और दूसरा एक इंसान बिल्कुल नॉर्मल सोचता है, नेचुरल वे में आता था। फिर इसी तरह तौहीद की पयाम्बर है कायनात, एक मालिक के इशारों पे चलती है, तो मैं क्यों ना चलूं। और इसी तरह फिर अकल और सोच पर उभरने वाली है ये कायनात, बस आंख खोल के देखिए। और फिर अगली टिप ले लीजिए, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। आप ये महसूस करेंगे जब आप खुली जगहों पे जाएंगे, जैसे अल्लाह ताला सूरत गाशिया में क्या कहते हैं, अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ खुलिकत, क्या ये नहीं देखते कि ऊंट कैसे पैदा किए गए। आइंस्टाइन कहता है, जो कायनात को देखेगा इसे मालूम होगा कि खालिक हिकमत वाला है, वो शतरंज नहीं खेलता, यानी बेकार काम नहीं करता। जो भी काम अल्लाह ताला करते हैं वो बड़ी खैर वाले होते हैं। वो जात जिसने हर चीज की तख्लीक बेहतरीन अंदाज में की, हमने आसमानों जमीन को हक के साथ पैदा किया, क्या तुम समझते हो कि हमने तुम्हें यूं ही पैदा कर दिया। मतलब यह कि हर चीज एक हिसाब और किताब और एक तरतीब और निजाम में पिरोई हुई है। इसे देखने वाला गवाही देगा कि कायनात का एक खालिक मालिक और मुदब्बिर है, जो मामलात को यूं ही नहीं चला रहा, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چاند سورج بھی ایک حساب سے چل رہے ہیں، نہ سورج کو چاند پکڑ سکتا ہے، نہ رات دن سے پہلے آتی ہے، یہ سب ایک دائرے میں گردش کر رہے ہیں. سورت یاسین میں یہ پیغام ہے. تو کیا پتہ چلا کہ جب آپ گھر میں اکیلے ہوتے ہیں نا، آپ کو لگتا ہے میں اکیلی ہوں. ذرا سا کائنات کے ارد گرد جو پھیلی ہوئی چیزیں اگر اس پہ غور و فکر کرتے جائیں گے نا، تو آپ کو خود سے خود محسوس ہوگا کہ آپ کے بہت سارے دوست ہیں جو باہر ہیں. آپ کو گلہریاں اپنی دوست لگیں گی، کبھی چڑیاں لگیں گی اور کبھی کچھ. تو پھر کیا دیکھا کہ غور و فکر کرنا ہے.